Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 18, Text Number 55. बहुत बहुत ज्यादा सुंदर और भक्तजनों का बहुत ही प्रिय श्लोक है. माना ये वो स्टेज है जिसको प्राप्त करने के लिए इतना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने अब तक जो भी भगवद गीता में बताया है वो उसका लक्ष्य जो है वो आज के श्लोक में भगवान हमें बताएंगे. कृपया मेरे साथ साथ इन पवित्र शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्. भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्. भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्. भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्. भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्. शब्दों का अर्थ देखिए, भक्त्या यानी शुद्ध भक्ति से माम मुझको, किसको भगवान कहते हैं मुझको, शुद्ध भक्ति से अभिजानाति जाना जा सकता, यानी कि जो मुझे जानना चाहते हैं वो सोच लें पहले से ही मुझे जानने का मेथड क्या है. भक्त्या माम अभिजानाति, अब शास्त्र पढ़ने से वगैरह और दूसरे ज्ञान तप इत्यादि करने से मुझे प्राप्त या मुझे जान नहीं सकते हो, ज्ञान अर्जित करने से भगवान को जाना नहीं जा सकता, केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता. भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति आगे यावान, किस तरह, जितना यश चास्मी जैसे मैं हूँ तत्वतः, रियल में तत्व में मैं जैसा हूँ वैसा मुझे केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है. ततो और उसके बाद जानने के बाद पश्चात माम यानी मुझको तत्वतः सत्य ज्ञात्वा जानकर, यानी कि जब भक्ति के द्वारा मुझे जानेंगे और मुझे जानने के बाद मुझे ही ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, जब मैं मुझे जान लेंगे और पता चल जाएगा कि मैं ही सर्वस्व हूँ मैं ही तत्व हूँ तो क्या करेंगे, विशते तदनंतरम. विशते का मतलब होता है प्रवेश कर जाएंगे, तद अनंतरम अनंत भगवान के अंदर प्रवेश कर जाएंगे. ये कितना अना भगवान यहाँ पर बात बता रहे हैं कि जब आप तत्व से समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ तो मेरे अंदर आ जाओगे मेरे. अब यहाँ पर विशते तदनंतरम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मायावादी लोग को मौका मिल जाएगा कि हाँ देखो भगवान ने लिखा ना, विशते का क्या मतलब होता है, प्रवेश कर देना. अब प्रवेश करने का मतलब यहाँ पर भगवान अगर वही प्रवेश करना जो ब्रह्म के अंदर तदाकार हो जाता है उसके विषय में बात करते तो कैसे कर सकते हैं. अब तो वो वाली बात उन्होंने श्लोक नंबर 54 में कर दी ना, भगवान ने क्या कहा, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम. ब्रह्मभूत की प्रसन्न आत्मा स्थिति पर पहुंचने के बाद तुम्हें सब कुछ इक्वल लगेगा और फिर मेरी भक्ति प्राप्त होगी और मेरी भक्ति प्राप्त होने के बाद वापस तुम ब्रह्म के अंदर लीन हो जाओगे, ऐसे कैसे बोल सकते भगवान। अब भक्ति प्राप्त होगी तो आगे जाएंगे ना लाइन से, मेरा इतना मन है कि वापस से जो शुरू कितने सारे श्लोक है ना वो डायरेक्ट से वापस वापस पढ़े, एक दफा से सीरीज में एक ही मतलब एक ही क्लास में एक ही लेक्चर में यहाँ तक आए ताकि हमें बिल्कुल वापस से समझ में आए। तो भगवान ने पहले बोल दिया कि भाई उस टाइम पर क्या होगा, मद भक्तिम लभते पराम। और आज भगवान क्या कहते हैं, जब भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी फिर क्या होगा, भक्त्या माम भी जानाती, भक्ति से आप मुझे जान सकते हो, यावान यश्चास्मि तत्वतः, जिस प्रकार मैं तत्व से हूँ विस्तरा, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, और उसके पश्चात मुझे ही तत्व समझोगे, मुझे ही तत्वों का तत्व जानकर, विशते तदनंतरम, विशते मतलब प्रवेश कर जाओगे तदनंतरम। तो प्रवेश करने का मतलब अब वापिस से ब्रह्मभूत ब्रह्म में प्रवेश करने का नहीं है, यहाँ पर क्या है, आत्मा सच्चित आनंद है और भगवान का जो परव्योम है ना, जो जो भगवान की परा प्रकृति जो गौलोक वृंदावन धाम है ना, वो भी सच्चित आनंद धाम है। अब वो सच आत्मा जो है वो सच्चित आनंदमय आत्मा अपने धाम में प्रवेश करती है, भगवान में प्रवेश नहीं करती है, वो अपने धाम में प्रवेश करती है। जैसे शास्त्र क्या कहता है कि हरा पंछी, अब हरा पंछी है, हरा पेड़ है, अब पेड़ भी हरा है और पंछी भी हरा है, तो यहाँ से ऐसा लगता है कि वो उसके अंदर चला गया, लेकिन इससे उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। ऐसा लगता है कि वो उसके अंदर चला गया, लेकिन आत्मा का जिस तरह भगवान, अब आत्मा भी परव्योम में चली जाती है, भगवान के धाम में चली जाती है, उसके अंदर तो चली जाती है बट आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, उसका अस्तित्व हमेशा रहता है। और आत्मा का क्या कार्य होता है, भगवान की भक्ति करना, वो कंटिन्यूअस चलेगा, वहां पर भी प्राप्त होगी भक्ति और वहां पर जो है वो वास्तविक शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना अमृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। वैकुंठ जगत में प्रवेश करने की बात हो रही है, विशते तदनंतरम का मतलब ये नहीं है कि भगवान के अंदर प्रवेश करे। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण और श्रवण करने के लिए आध्यात्मिक कृपा की याचना करते हुए गुरु और गौरंग से प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथ वितन्तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादं सह गण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अष्टदशोध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक प्रमाण 55 भगवान कहते हैं भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम् केवल भक्ति द्वारा ही मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना अमृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि भले मैंने तुमको कर्म योग बताया है, ज्ञान योग बताया है, ब्रह्मभूत अवस्था बताई है, लेकिन तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है मुझे मेरे धाम को प्राप्त करना, मुझे जानना, मुझसे प्रेम करना, तो ये सब उन सारे साधनों से नहीं होने वाला है बल्कि केवल भक्ति द्वारा ही मुझे यथा रूप में जाना जा सकता है। उसके लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कोई कर्म की आवश्यकता नहीं, कोई संन्यास की आवश्यकता नहीं है, कोई ब्रह्मभूत अवस्था की आवश्यकता नहीं है। भक्ति का मतलब होता है प्रेम। वास्तव में भक्ति का मतलब होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूले न कृष्णानु। ये होती है भक्ति कि बस मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो भगवान ने कहा जब तुम्हारे अंदर ये भावना आ जाती है फिर तुम किसी भी स्टेज से हो तो वो भक्ति महारानी आपको उस स्टेज से, चाहे आप ज्ञान योग में हो, कर्म योग में हो, ब्रह्मभूत अवस्था में हो, कहीं पर भी नहीं हो, निम्नतम स्तर से आपको भक्ति महारानी उठा के मेरे वैकुंठ लोक में लेकर आ जाती है। तुम्हें अपनी कंडीशन की, अपनी सिचुएशन की, अपने सर्कमस्टेंसेस की परेशानी नहीं करनी चाहिए, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम किधर भी हो, यदि तुम मेरे प्रिय भक्ति, मेरी भक्ति में सम्मिलित हो, यदि आप कृष्ण की भक्ति करते हो तो आप को गौलोक वृंदावन धाम में जाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि तभी भगवान ने कहा ना विशति तदनंतरम, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर समझाएंगे तात्पर्य में। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा शिवपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बोलते ना कि हाँ भगवान को मैं जानता हूँ, भगवान ये पैदा हुए थे और उन्होंने इतनी शादियां की थी, राज की थी, वो किया था, ये किया था। तो यहाँ पर केवल भगवान उनके लिए बता रहे हैं कि उस लोग ने तो मुझे समझा ही नहीं है, क्योंकि मेरे को समझने का एक ही साधन है और वो क्या है, भक्ति। यदि कोई भक्ति नहीं कर रहा फिर वो चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, भले सारे शास्त्रों के सारे श्लोक उसने रट लिए होंगे, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा पहले भक्ति करो। भक्ति का मतलब अभी प्रहलाद महाराज से अगर पूछे तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब भक्ति में सबसे पहले आपको भगवान की कथा श्रवण करनी है, पहला है। आप पहले किसी भी स्टेज पर पहुंच जाओ, आपको श्रवण करना है ठीक है। और उसके बाद कीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, भगवान की कथा लीला को गाना है। अब कीर्तन का मतलब खाली भगवान के नाम का जप करना नहीं होता है, ये भी हमें समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कीर्तन मीन्स समटाइम्स क्या है चेंट द होली नेम विद म्यूजिक, हम गाते ना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो म्यूजिक के साथ कभी कभी भगवान के नाम का उच्चारण करना, एंड समटाइम्स प्रीच अबाउट कृष्णा नेम और कृष्णा होली नेम गुण लीला, जो भगवान के नाम गुण लीलाओं का प्रचार करना, भगवान के विषय में बात करना, भगवान के विषय में सबको सुनाना, ये भी कीर्तन है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम, पहले सुनो और फिर उसको बताओ सबको, और विष्णु स्मरणम और भगवान का भगवान को याद करना, और उसके बाद क्या करना अर्चना वंदनम दास्यम सख्यम, उनकी अर्चना करना, उनकी भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को भोग अर्पण करना, भगवान की आरती करना, भगवान को हर चीज अर्पण करना। तो साथ साथ बताया गया कि भक्ति भगवान को और भगवान के स्वांशों को केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, मनोधर्म द्वारा नहीं, अपनी कल्पना के द्वारा उनको नहीं जाना जा सकता है ना ही, और ये बताया आगे ना ही अभक्तगण उन्हें समझ सकते हैं। अब अभक्तगण के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है, इसका मतलब नहीं है कि अभक्तों के अंदर दूसरी क्वालिटीज भी नहीं है, वो भौतिक ज्ञान हासिल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भौतिक चीजों में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ सकते। दिस इज द स्टेटमेंट, ये इस श्लोक से हमें पता चलता है केवल भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्ति के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी पड़ती है। अब भक्ति भी खुद से नहीं करनी है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से जो मनोधर्मी भक्ति करोगे ना, वो आपको भगवान तक नहीं पहुंच जा सकेगी। साफ साफ लिखा है कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्ति के पथ दर्शन, यानी कि जैसा शुद्ध भक्त आपको पथ बताएगा, रास्ता बताएगा, उसी के अनुसार आपको भक्ति करनी है। ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हाँ भाई ये भी तो भक्ति है, कुछ अपनी मर्जी से भक्ति करना शुरू कर देते हैं, किसी टाइम पर भी भगवान की सेवा करो, ये करो, अपनी मर्जी से नहीं, जैसा कि शुद्ध भक्त हमें बताते हैं ऐसी हमें भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य यानी तत्व उससे सदा छुपा रहेगा। अगर किसी शुद्ध भक्त की आपको मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है ना उसका, तब तक आप भगवान के तत्व को, भगवान संबंधी जो सत्य है वो आपसे छुपा रहेगा, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.25 में कहा गया। क्या कहा वहां पर, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता, भगवान कहते हैं मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता हूँ, नाहं मैं नहीं होता हूँ, प्रकाशः प्रकाशित सर्वस्य सब लोग के सामने नहीं दिखता, केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। श्रील प्रभुपाद जी फिर से वापस बता रहे हैं कि सिर्फ पांडित्य यानी ज्ञान प्राप्त करने से या फिर मनोधर्म अपनी मनमानी करने से भगवान को समझना असंभव है। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। अगर कृष्ण को समझना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाएं और कृष्ण की भक्ति में रत लग जाए, मतलब इतना कृष्ण की भक्ति करने के बाद ही हम भगवान को समझ सकते हैं। उससे क्या होगा, भगवान ने खुद बताया ना, देखो 10.10 में भगवान ने क्या कहा, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति। भगवान ने कहा बुद्धि उसके पास होती है लेकिन जब तक बुद्धि योग में नहीं प्राप्त करूंगा तब तक वो मुझे नहीं समझ सकते, और कैसे प्राप्त करेंगे वो बुद्धि योग को, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम, जब मुझे प्रेम से मेरा भजन करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भगवान की लीलाओं का गान करेंगे, तभी उनको ऐसी बुद्धि प्राप्त होगी जिससे वो भगवान को ये नाम उपयंति थे, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं, ये एक ही बात है। और ये कैसे होगा, तेषां सतत युक्ता नाम, जब तक भगवान की नाम का भजन करेंगे, भगवान की लीलाओं की कथा करेंगे और कंटिन्यूस भगवान का स्मरण करेंगे तभी ऐसा होगा। तो यहाँ पर बताया केवल पांडित्य या मनोधर्म से भगवान को नहीं समझा जा सकता है, कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत में भक्ति में तत्पर हो। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। कितना भगवान श्रील प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे हैं, देखो कि विश्वविद्यालय यानी कि आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको बहुत बहुत उपाधियां मिले, बहुत सारी ट्रॉफीज आपने जमा कर ली है कि भाई मैंने देखो ये भी मेरे को मिला है, ये भी मिला है, ये भी, ये सारे जमा करके आप बता दो कि ये सारे गिफ्ट मुझे मिले क्योंकि मैंने इतनी सारी एजुकेशन हासिल की है, लेकिन वो एजुकेशन आपको भगवान तक नहीं पहुंचाती। क्योंकि आज के विश्वविद्यालय में आपको क्या सिखाया जाता है कि आप ये शरीर हो और शरीर को किस तरह से खुश करो, कैसे आप इस शरीर संबंधी चीजों को प्राप्त करो, कैसे अपने इस भौतिक शरीर से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करो, तो ये सब चीजें जो है वो आपको कभी भगवान तक नहीं पहुंचा सकती। इसी शब्द बोलते हैं विश्व, इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान यानी तत्व से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण धाम में प्रवेश कर सकता है। और फिर पूर्ण तरह से कौन अवगत है, जो कि किसी पूर्ण तत्वदर्शी गुरु का शिष्य है। यहाँ पर ये बात समझना है कि खुद से आप भगवान के विज्ञान से पूर्णतया कभी भी अवगत नहीं हो सकते। तभी भगवान ने कहा था सिद्धि प्रणिपातेन परिपरिश्रेण सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम यानी न तत्वदर्शी, तुम्हें उपदेश वही दे सकते हैं जिन्होंने तत्वों को देखा है। और हम चूंकि भौतिक शरीर में गिरे हुए हैं तो हम अपने आप से कभी भी कोई कुछ सीख नहीं सकते, तो ऐसे भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त की शरण लेने के बाद जो ये सब हमें बताएगा वही वैकुंठ लोक या कृष्ण धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ ये नहीं है कि अपना स्वरूप खो बैठना। यहाँ पर वापिस श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो स्वरूप को नहीं खोना है। ब्रह्मभूत का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अस्तित्व को खत्म कर दो, भगवान के अंदर लीन हो जाओ। भक्ति तो रहती है और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। अब भक्ति का मतलब है कि आप भक्ति कर रहे हो और भक्ति के लिए क्या होना चाहिए, ईश्वर भी तो होना चाहिए, ईश्वर का भी अस्तित्व होना चाहिए, भक्त का भी अस्तित्व होना चाहिए, दोनों होने चाहिए और भक्ति की विधि भी होनी चाहिए। विधि क्या है, श्रवण कीर्तन, ये कंटिन्यूअस चलेगा। भक्ति जो है ना गोलोक वृंदावन धाम में भी चलती है। तो ये सारे नियम जो ये ना सख्यम आत्मा निवेदनम और वात्सल्य भाव ये सब वहां पर भी होता है, ये सब भक्ति है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अस्तित्व रहता है तब तक, जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक भक्त तथा भक्ति की विधि भी रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता है, समझ लेना चाहिए कि मुक्ति के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम लीन हो जाओगे और तुम भक्ति नहीं करोगे। वो प्रेम का आस्वादन, रियल जो प्रेम आस्वादन है, यहाँ पर संसार में देखो हम प्रेम से कितना आनंदित होते हैं, लोग लड़के लड़कियां सब आपस में प्रेम करते हैं, ये सब प्रेम नहीं है, ये सब तो प्रेम का एक समझो छाया मात्र है, एक छाया होता है। वास्तव में मिरर में आईने में हम देखते हैं कि देखो कितना, आईने में जब समझो एक एप्पल नजर आ रहा है आपको, उसको आप खाओगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। उसी तरह से ये आईना है जो हमें दिखाई दे रहा है ना, एक समझो हो रहा रियल में वो प्रेम है। ऐसा नहीं कि प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रेम है गोलोक वृंदावन धाम में और यहाँ पर उसकी छाया वो हमें इतनी सुंदर लग रही है। सोचने की बात है जब ये छाया इतनी अच्छी है कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े जो है ना इस संसार के लोग इसके लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए, मतलब अपना सब कुछ दाव पर लगाने के लिए एग्री हो जाते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं इस भौतिक प्रेम को प्राप्त करने के लिए। खाली सोचा जाए कि जब वो प्रेम, वास्तविक प्रेम जब हमें मिलेगा, जब भगवान प्राप्त हो जाएंगे और हमें भगवान से प्रेम करने का अवसर प्राप्त होगा, तो फिर हम चाहेंगे कि नहीं भगवान नहीं, मैं नहीं रहूं, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए और बस भगवान ही भगवान हम, तो तब तो हमारी रियल भक्ति, रियल प्रेम का जो भाव है वो करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। और जब अवसर प्राप्त होगा तब हम बोलेंगे नहीं हमें लीन होना है, तो ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति जो है वो मुक्ति के बाद भी रहती है। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना, यानी कि जो शरीर आत्मा के अंदर जकड़ दी गई है वहां से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और आध्यात्म जीवन में वैसा ही अंतर है, वही व्यक्तित्व यानी स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध भावना कृष्ण भावनामृत में ही विशति आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर है। कैसा अंतर है? मुक्ति कैसे मिलती है? इस भौतिक देहात्म बुद्धि से आपको मुक्ति मिल जाती है, यानी मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। आप अपना जो वास्तविक जो दिव्य स्वरूप है उसके अंदर आ जाओगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। वही व्यक्तित्व यानी स्वरूप बना रहता है, आपकी रियलिटी, आपकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, वो तो बना रहता है आपका स्वरूप। लेकिन शुद्ध कृष्ण भावना अमृत में ही विषते शब्द का अर्थ है। अब यहाँ पर विषते मैंने बताया ना आपको कि प्रवेश करना है, तो किसमें? मुझ में प्रवेश करता है। भगवान ने कहा ज्ञात्वा तत्व माम तत्व तो ज्ञात्वा विषते तदनंतरम, फिर वो मुझ में प्रवेश करता है, ऐसा है। तो ब्राह्मवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते सावधान, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर चले जाओगे, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते देखो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। विषते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है। कितना आनंददायक वो समय होगा जब अपने अस्तित्व के साथ अपनी आत्मा को इतना पवित्र करने के बाद। ये सारी देखो विधि बताइए ना कि पहले हमें बताया कि बुद्धिया विशुद्धया युक्तो द्वितीयात्मानम नियम्य च शब्दादीन। जब सांसारिक किसी चीज की भौतिक चीज की कोई भी आकांक्षा नहीं रह जाएगी, मन बुद्धि वाणी पर कंट्रोल हो जाएगा, अहंकार बल दर्प काम क्रोध सब पर विमुच हो जाएंगे, किसी के साथ कोई निर्ममः सब ये हो जाएगा ना, उसके बाद ब्रह्म बोध, फिर ब्रह्म का तदाकार होगा। और ब्रह्म को समझने के बाद पता चलेगा ये ब्रह्म ज्योति की जो रोशनी है वो कृष्ण से आ रही है और कृष्ण को प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। और जब कृष्ण प्राप्त हो जाएगा तभी उसी समय से वास्तविक भक्ति स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं विषते का तात्पर्य है मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में जाए, भगवान की संगति करने का तथा उसकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि एक हरा पक्षी यानी शुक्ष तोता, शुक होता है ना तोता, शुकदेव होता है, हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता है कि वह वृक्ष से तदाकार यानी लीन हो जाता है, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। वहां पर जाने के बाद तो उसको वास्तविक आनंद प्राप्त होने वाला है, तो फिर वो अपना अस्तित्व खोना क्यों चाहेगा? निर्विशेषवादी सामान्यता समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते। अब उसमें निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं, जिस तरह समुद्र में गिर के नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो भी समुद्र बन जाती है, उसी तरह आत्मा भी भगवान के अंदर लीन हो जाती है। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, तो हो सकता है उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहते हैं जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। ये देखो कितना सुंदर श्री प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि देखो यहाँ पर अब हम संसार में है ना, तो संसार में क्या होगा, ऊपर अब जलचर प्राणी होता है ना, जलचर यानी समुद्र का जो प्राणी होता है, अगर वो सिर्फ ऊपर ऊपर से समुद्र में तैरता रहेगा ना ऊपर ऊपर से, तो उसको कुछ भी वो स्वाद नजर नहीं आएगा। समुद्र के अंदर कितने रत्न हैं, समुद्र के अंदर कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, हीरे हैं, वो बहुत सारी चीजें और भी हैं जो कि देखने लायक हैं, जो कि ना महसूस करने लायक है। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से वो तैरता रहेगा तो उसको समुद्र की गहराई के विषय में कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे उसको ज्यादा आनंद आता जाएगा, ज्यादा ज्यादा और ज्यादा आनंद आता जाएगा। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो साकारवादी होते हैं नदियों की तरह समुद्र में गिरकर अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करते हैं, बल्कि वो कैसे करते हैं, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेक अनेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, खाली ऊपर ऊपर से समुद्र को जानते रहें तो ये पर्याप्त नहीं। मजा तो जब है जब अंदर जाओ, गहराई में जाओ। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है कि वहां पर क्या है, उसके विषय में जानना कैसा लगता है, वहां पर कैसा आनंद है। तो वो सब जानने के लिए अपने आप को खत्म थोड़ी करना है, अपना अस्तित्व तो बनाए रखना है। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। क्यों जान सकता है? भक्त के अंदर क्या होता है, उसके दिव्य गुण होते हैं। भक्त के अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं जो कि भगवान के अंदर होते, तो उनके भगवान के गुणों के उसके उसकी वजह से तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप से जान सकता है, फिर भगवान को और भगवान के ऐश्वर्य को सही तरह से जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, बहुत ही सुंदर 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 53 और 54 है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं केवल भक्ति द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। बहुत 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 ही सुंदर श्लोक है जो आज भगवान हमें याद करा रहे हैं। भगवान ने कहा है श्लोक नंबर 53 और चैप्टर नंबर 11, भगवान कहते हैं, नाहम वेदैन तपसा नादानेन सेच्यया, नाहं वेदैन तपसा नादानेन न चेच्यया, शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप, नाहं वेदाय न तपसा न जान न दानेन चेच्यया। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। और भगवान आगे कहते हैं, भक्त्यात् अनन्यया शक्य, हे अर्जुन केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और उसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। यानी कि कोरा अगर हम वेद अध्ययन कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। वेद अध्ययन करना और दान देना और यज्ञ करना, भगवान ने कहा था ना कि हमें ये सब करने हैं, ज्ञान यज्ञ ये सब चीजें नहीं छोड़नी है। लेकिन अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है, भगवान कहते हैं भक्त्यात् अनन्यया शक्य, अगर भक्ति होगी तो ही आप मुझे समझा सकते हो। यानी कि भक्ति के द्वारा जो कार्य करने हैं, भक्ति का मतलब भी सक्रिय रहना है, कोई कार्य करना है, यही सारे कार्य करेंगे, वेद पढ़ेंगे और है ना दान देंगे और भगवान की भक्ति के अलग अलग नियमों का पालन करेंगे, यज्ञ करेंगे। लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं है तो आप भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन भक्ति महारानी जब प्रवेश कर लेती है तो भी हम भगवान को समझने के लिए योग्य होते हैं। यही बात श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताएं कि जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है केवल भक्ति द्वारा ही उसे समझा जा सकता है, इसी की पुष्टि यहाँ पर भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। आगे शंकरपाद जी बोलते हैं कि भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब हम ब्रह्मभूत अवस्था, भौतिक बुद्धि क्या होगी, भौतिक तब तक हम शरीर हैं, शरीर से पहले ज्ञान योग, कर्म योग और ये सब करते करते ब्रह्मभूत अवस्था आ जाएगी और फिर भगवान के विषय में श्रवण करेंगे भक्त के द्वारा, तो भक्ति का शुभारंभ होता है जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है। फिर वापस स्टार्ट, अभी मेन वो भौतिक बुद्धि खत्म हो जाएगी, ब्रह्मभूत प्राप्त हो, फिर वापस श्रवण से उसका स्टार्ट होगा। परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः उसके बाद ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कर्मश तथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। फिर जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम आत्मा है और फिर जब भक्ति की विधि स्टार्ट होगी, फिर क्या विधि स्टार्ट होगी, वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो इसके जरिए क्या होगा कि पवित्रता खुद ब खुद आएगी। भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो खुद ब खुद पीछे पीछे आएंगे भक्ति महारानी के। हमें भक्ति महारानी के दामन को कस के पकड़ना है। ज्ञान और वैराग्य को पकड़ने के बाद भक्ति नहीं आती है, हो सकता है आ भी जाए किसी को समझ में बात, लेकिन जब भक्ति हम करेंगे तो डेफिनेटली ज्ञान और वैराग्य उसके पीछे पीछे आ जाएंगे और उससे क्या होगा, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और भौतिक कल्मश तथा लोभ यथा काम का विलोप हो जाएगा। इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, लोभ खत्म हो जाएगा, भौतिक गंदगी खत्म हो जाएगी। जो जो भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं लुप्त होती हैं त्यों त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता है। जब तक इच्छाएं होंगी तब तक वही पूरी करता रहेगा, भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा, लेकिन इच्छाएं समाप्त हो गई तो फिर सदैव भक्ति में प्रवृत्त होगा और अधिक से अधिक तर भगवान से प्रेम करना शुरू हो जाएगा और इस तरह वह भौतिक कर्म से मुक्त हो जाएगा। भौतिक जो गंदगी है वो सारी खत्म हो जाएगी, जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। ये जो भगवान ने आज हमें बताया है केवल भक्त्या माम अभिजानन्ति, उसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एकदम पवित्र हृदय के साथ भौतिक इच्छाएं, भौतिक गंदगी, भौतिक कलमश जिसके अंदर नहीं हो, भगवान की भक्ति द्वारा जो यहाँ भौतिक भक्ति द्वारा जो पवित्र हो जाता है, फिर वो इस योग्य हो जाता है कि हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता है कि श्रीमद् भागवतम में भी बताया है, इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी हुई है। आगे बताया 4.1.12 में इस तरह होती है, अप्रायणात् सत्प्रापि ही दृष्टम। इसका अर्थ ये है जब आप मुक्त हो जाते हो, मुक्ति के बाद भी ही दृष्टम यानी कि भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवतम में वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठित हो पाना है। अभी कैसे है श्रीमद् भागवतम में क्या दिया गया है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी देखो क्या बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में वास्तविक भक्ति में मुक्ति की जो परिभाषा दी गई, क्या दी गई है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का मतलब है दूसरे सारे जितने भी आज तक तुमको 84 लाख योनियां जो मिल रही थी, जिसके अंदर अलग अलग स्वरूप के अंदर आपको जाना पड़ रहा था, तो स्वरूपेण व्यवस्थिता, स्व का मतलब होता है अपना निजी और रूप का मतलब होता है आपकी जो अपनी निजी रियलिटी है, निजी जो रूप है उसके अंदर प्रवेश करना, ये है मुक्ति। तो मुक्ति जो मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी कि फिर वापस से वहां पर जाएगा जहां पर मेरा एक अस्तित्व पहले से ही है। गौलोक वृंदावन धाम में हम सबका एक अस्तित्व पहले से ही है और मुक्ति का मतलब ये है कि आत्मा अपने उस अस्तित्व के साथ जुड़ जाती है। अतएव स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। स्वाभाविकता यही है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करना है। अब भगवान का अंश है क्योंकि अंश का कार्य सेवा करना है, तो यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस है। भगवान की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, ये सब प्रैक्टिस है। और स्वाभाविक हमारा उद्देश्य यही है कि हम भगवान की सेवा करेंगे, और भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन ये जो भक्ति है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो अंत तक, यानी कि उसका कोई अंत है ही नहीं, वो भगवान के धाम में चलने के बाद भी यही होगा, और यही हमें करना है। प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है, और अंश का स्वाभाविक धर्म क्या है? सेवा करना। मुक्ति के बाद भी ये सेवा कभी भी नहीं रुकती है। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। वास्तविक मुक्ति क्या है? कि हम अपने इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलें कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है, और भगवान की सेवा करने से ही उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। ये है वास्तविक मुक्ति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।